सभी को मेरा नमस्कार और मैं CCYSE आवाज़ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ज्योति और मुझे आज एक आदिवासी युवा समूह प्रयत्न के सदस्यों के साथ कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रयत्न एक ऐसा युवा समूह है जो कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में जलपाईगुड़ी के चाय बागानों में 10 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत है एवं मुख्य रूप से वे छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए प्रशिक्षण और परामर्श देकर तैयार करते हैं। आज यहाँ हमारे साथ हैं सुजीत, निकिता और फूलमणि। ये सभी प्रयत्न के सदस्य हैं। कृपया आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे श्रोताओं को अपना एक छोटा सा परिचय दें।
थैंक यू ज्योति। मेरा नाम सुजीत बारला है और मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में आता है एक चाय बागान से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल में मैं एमए एजुकेशन की पढ़ाई दिल्ली अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पूरी कर रहा हूँ और मैं प्रयत्न का एक सदस्य हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार और जोहार सभी को। मेरा नाम फूलमणि मुंडा है और मैं भी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इंडोंग चाय बागान से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं एमए सोसाइटी एंड कल्चर आईआईटी गांधीनगर से कर रही हूँ। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग एंड जोहार सभी को। मेरा नाम निकिता चिकबड़ाइक है और मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैं आई बिल चाय बागान से बिलोंग करती हूँ और मैं फिलहाल सेकंड ईयर में हूँ, टिस से एमए इन एजुकेशन कर रही हूँ। थैंक यू।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यह है कि वास्तव में प्रयत्न की शुरुआत कैसे हुई? मेरा मानना है कि संगठन 2009 से कार्यरत है। हम जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण इस संगठन का गठन हुआ और युवाओं ने किन उद्देश्यों को लेकर साथ आने का फैसला किया।
सबसे पहले जैसे कि आपने कहा ज्योति जी कि 2009 में हमारा ये प्रयत्न का संगठन हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसको शुरुआती दौर में ऐसा था कि एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा बगान, हम सभी तरीकाओं से, सभी जगहों से चाय बगान से घिरे हुए हैं। तो एक छोटा सा चाय बगान हमारे ब्लॉक में पड़ता है जो कि चिलौनी चाय बगान के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले वहां के कुछ लड़कों ने कुछ इनिशिएटिव लिया और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया क्योंकि वहां के जो बच्चे बच्चियां थे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, मेनली क्लास 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम होता था उसमें पास नहीं कर पा रहे थे और पास नहीं कर पाने के कारण से बहुत लोग चाय बागानों में काम करने के लिए जाते थे और बहुत लोग माइग्रेट हो जाते थे, बाहर काम करने के लिए चले जाते थे और बहुत सारे लड़के लड़कियां तो खुद शादी भी कर लेते थे। तो ऐसे ही कुछ लड़कों ने मिलके बात किया कि हाँ ये इसको हम किस तरीका से रोक पाएंगे या फिर जो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं उनको हम लोग किस तरीका से बचा पाएंगे। तो उन्होंने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया, वो हर साल करने लगे उसके बाद। तो सबसे पहले उनका ये इंटेंशन था कि फेलिसिटेशन प्रोग्राम के जरिए कि एटलीस्ट क्लास 10th और 12th तो कम से कम बच्चे पास हो जाएं। और वे हर साल मतलब प्रोग्राम रखते थे कुछ हमारा, जैसे कि बिरसा जयंती होता था, उसके बाद में करम पूजा महोत्सव होता था। तो ऐसे ऐसे बड़े महाउत्सव के दिन वे क्या करते थे, जो आदिवासी बच्चे चाय बागान से क्लास 10th या फिर क्लास 12th की पढ़ाई पास करते थे तो उनको कुछ उपहार स्वरूप वे प्रदान करते थे। तो इससे क्या होने लगा कि सडनली चेंज आने लगा 2-3 साल के बाद में, कि 2-3 साल के बाद में जो ड्रॉप आउट रेट रुक गया था, जो बच्चे पढ़ाई नहीं पास नहीं कर पा रहे थे, देखा गया कि वही सारे बच्चे पास करने लगे हैं। इसी तरीका से मतलब लगा लोगों को कि हाँ ये काम करता है। तो फिर उन्होंने एक तरीका का माध्यम बनाया कि हम और क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। फिर उन्होंने ग्रुप में स्टडी करना शुरू किया और इस तरीका से बोला जाए तो प्रयत्न की शुरुआत हुआ
जी।
और कुछ ऐड करना चाहोगे आप?
हाँ जी, जैसे ये शुरुआत हुआ, पेरेंट्स, हमारे माता पिता है और गांव के कुछ कुछ बुजुर्ग हमें सहायता देने लगे और हमें एनकरेज करने लगे, और ऐसे ही हमारा ये कंटिन्यू होते रहा और अभी तक हम प्रयत्न के एक्टिव मेंबर्स बहुत सारे लोग बन चुके हैं। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत खुश हैं।
जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रयत्न आपके समुदाय में बच्चों, युवाओं के साथ साथ व्यस्कों के लिए भी कई क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं जहां आपके सदस्य आदिवासी समुदाय के बच्चों को बड़े पैमाने पर ट्यूशंस देते हैं। आपने भोजन वितरण यानी कि एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी चलाया है और यौवन अपराधों के शिकार लोगों का समर्थन भी करते हैं। अपने समुदाय में युवाओं के बीच बेरोजगारी के मुद्दे को आपने अपने तरीके से उजागर किया है। क्या आप इन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में कुछ बता सकते हैं जिनका आप संचालन करते हैं?
जी हाँ, सबसे पहले तो हमारा एक मेन उद्देश्य था एजुकेशन को सपोर्ट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने वही स्टार्ट किया कि जो बच्चे निचले लेवल में थे, जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उनका भी तो मतलब वो भी एक तरह से बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम बहुत सारे बगानों में स्टडी सेंटर मतलब चलाने लगे, और उस स्टडी सेंटर में हम खुद जो भी कॉलेज लेवल के स्टूडेंट थे, जो भी एचएस लेवल के स्टूडेंट थे, वो खुद जाके पढ़ते भी थे, साथ में दूसरों को पढ़ाते भी थे। इस तरीका से एक दूसरे को मदद करते थे और आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते थे लोगों को। तो इस तरीका से हमने ट्यूशन सेंटर बनाना शुरू किया अलग अलग चाय बगानों में। उसके बाद हम लोगों ने गार्डनिंग को लेकर भी काम किया। गार्डनिंग मतलब ऐसा होता था कि जो जगह हमारे एरिया में जो जगह कचरा इलाका पड़ता था, तो उस जगह को हम लोग साफ करके उस जगह को हम लोग एक देखने लायक जगह बनाने की कोशिश करते थे। और हम लोग इस तरीका का जगह मेनली हम लोग हॉस्पिटल्स के पहले आगे तरफ या फिर स्कूल के सामने का जगह को चूज करते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग आते जाते हैं, बच्चे आते जाते हैं, और हॉस्पिटल्स जैसे कि हॉस्पिटल्स में बीमार लोग रहते हैं, तो वो जगह गंदा ना रहो, वो जगह साफ हो। तो इसलिए हम लोगों ने उस तरीका का जगह को चूज किया, डिसाइड किया, और ऐसे ऐसे जगहों के आगे तरफ हम लोग अगर वहाँ पे गंदा है तो हम लोग साफ करते थे, और साफ करके उस जगहों पे फ्लावर्स लगाते थे या फिर कुछ अलग एक तरीका का बगान बनाते थे। फुलमुनि, आप कुछ कहना चाहोगे?
हाँ जी, मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चनली एक प्रोजेक्ट था जो रिसेंटली COVID-19 में लोग अफेक्ट हुए थे। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे, जैसे कि बहुत सारे लोगों का काम बंद हो चुका था। हमारे वहां पे ऐसे लोग हैं जैसे वो हर दिन कमाते और हर दिन खाते हैं, तो इन सारे लोगों को बहुत दिक्कतें आने लगी थी। और इन सभी को नजर रखते हुए हमने एक आइडिया निकाला प्रोजेक्ट करने का, क्यों ना हम इनको मदद करें। और इस तरीके से हमने फंड रेजिंग का प्रोग्राम निकाला, हम ऑनलाइन फंड रेज करने लगे, जिसको हम कम्युनिटी मोबिलाइज करने लगे। उससे हम प्रपोजल बना के उसके बाद लोगों ने फंड देना शुरू किया, और उसके बाद हम गांव-गांव में गए, और गांव-गांव में जाके हमने सभी घरों को नहीं दिया, क्योंकि हमारा उतना कैपेसिटी नहीं था कि हम सारे घरों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसीलिए हमने गांव-गांव में जाके उन घरों को चूज किया जो सबसे ज्यादा नीडी थे हमारे हिसाब से, जिन जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनकी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा है घर में, जिनके कमाने वाले एक है, जो लोग बीमार है जो कोविड के वजह से। तो इन सब घरों को हमने चूज किया और अराउंड 586 घरों को हमने तीन फेसेस में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। तीन फेसेस मतलब एक पहला फेज में 1 महीने के लिए राशन दिया गया, दूसरा फेज में 15 दिन के लिए, और तीसरा फेज में 10 दिन के लिए। ऐसे करके हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। और अभी मैं निकिता को बोलना चाहती हूँ, आज प्रोग्राम के बारे में कुछ बता दूँ।
हाँ, तो मैं आज आज ही प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि ओल्ड एज लोगों के साथ हम लोग काम करते थे। ये स्टार्ट हुआ था 2018 में दिसंबर से। तो हम सोचे कि जो ओल्ड एज है, जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि अपने माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, तो वो अकेले रहते हैं अपने घर पे, उनका खाना पीना का दिक्कत होता है, इवन बहुत सारी चीजें, उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता है। तो हम लोग ये काम स्टार्ट किए थे वही टाइम मैं जाती थी एक साथ किया बोल के बगाने, वहां पे जाती थी और उनसे बात करती थी, उनसे बैठती थी, उनका पुराना एक्सपीरियंस जानती थी। तो मुझे उनका पुराना एक्सपीरियंस जान के मुझे अच्छा लगता था। और ऐसे हम लोग लगभग 10-12 ऐसे ओल्ड एज दादी या फिर आजा या फिर आजी हो गया, पूरा दिन उनके साथ बिताते थे। और लाइक जैसे पिकनिक जैसे खाना वाना बना के भी हम भी खाते थे और उनको भी खिलाते थे, और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते थे कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा और क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है वगैरह वगैरह। थर्सडे को हम लोग सफाई अभियान करते थे पूरे मेटली में, कि जो बाजार के दौरान बहुत गंदगी फैल जाती थी, तो थर्सडे को छुट्टी रहती है यहाँ पे, थर्सडे को बंद होती है बाजार वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, तो इसीलिए हम उस दिन हम वो सफाई अभियान का काम करते थे। जो भी कचड़े गंदगी फैला हुआ होता था रोड के साइड में, तो वो सब हम लोग क्लीन करते थे।
हाँ, और मैं हेल्थ के बारे में भी बताना चाहती हूँ। हमारा कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो हमें इमरजेंसी में लेना पड़ता है। लोग हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी मदद करें, लोग हमें जानते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो लोग हमें आ जाते हैं। जैसे कि कोई बीमार हो गया तो उनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, तो वो लोग आ जाते हैं। उनको लगता है कि हमें गवर्नमेंट पैसे दे रही है, हमारे पास पैसे हैं, तो हम लोगों को निराश नहीं करते हैं। और पहली बार हम फंड रेजिंग स्टार्ट किया था हमने, एक बच्ची थी 7 साल की, प्रिंसिना नाम करके, उनके मम्मी पापा आए थे, उसको ब्लड कैंसर हो गया था और वो बहुत होप लेके हमारे पास आए थे और हम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। तो हमने तभी से फंड रेजिंग स्टार्ट किया था और हमें फंड्स भी मिले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस बच्ची को बचा नहीं पाए क्योंकि वो बच्ची बहुत ही बुरी हालत में थी, थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी थी, और उसको मुंबई ले जाया गया और मुंबई में ही उसकी जान चली गई। लेकिन उसके बाद भी और केसेस आए हैं जिनको हमने मदद की है, हम एक दूसरे की मदद कर चुके हैं। प्रोग्राम्स हमारी इसी तरह चलती है, हमारा कोई फिक्स प्रोग्राम करके सिर्फ क्लीनलीनेस ड्राइव है, ट्यूशन है, बच्चों को ट्यूशन देना, और आजादी प्रोग्राम जो एल्डरली पीपल लेके करते हैं हम लोग, और स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स में दाखिला करवाने के लिए मदद करना, बस यही। धन्यवाद।
जी बिल्कुल। तो प्रयत्न के अधिकतर सदस्य युवा हैं, वे जिन सामाजिक कार्यों में शामिल हैं उनके साथ आने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों के सामना आप लोग कैसे करते हैं? क्या आपके प्रयासों को आपके क्षेत्र में आम जनता, सरकारी संगठन या शैक्षणिक संस्थानों में से किसी ने भी कभी कोई मान्यता या समर्थन दिया है? आप सभी विद्यार्थी होते हुए भी इन सभी कार्यों के लिए समय कैसे निकालते हैं?
जी, तो धन्यवाद इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये है कि हम कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इस वजह से हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारे इलाका में, क्योंकि हमारा जो इलाका है मेनली एजुकेशन की दृष्टि में देखा जाए तो उसकी दृष्टि से भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, अच्छी पढ़ाइयाँ करते हैं, फिर कुछ को समझाते हैं या फिर बताते हैं। इस तरीका से हमारा आसपास में इस तरीके का बड़ा यूनिवर्सिटीज या फिर बड़ा कॉलेजेस नहीं है जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीका की शिक्षाएं प्राप्त करें और अपने जगह में जागरूक फैला सके। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो समझ है या फिर हम जिस तरीका से काम करते हैं, लोग हमें एक अलग नजरिया से देखते हैं, एक अलग नाम हमें दे देते हैं, जैसे कि एनजीओ। उन्हें लगता है कि हम काम करते हैं तो वे हमें एक अलग नाम दे देते हैं कि एनजीओ। तो जैसे कि हम लोग चाइल्ड का ट्रैफिकिंग को लेके बहुत बार इधर उधर दौड़े, उसके बाद जो चाइल्ड मैरिज हो गया उनको लेके इधर उधर दौड़ा भाग करते थे, बच्चों की पढ़ाई को लेके उनको हायर एजुकेशन में उनको रास्ता बताते थे। तो इस तरीका का जब हम लोग काम करते थे तो आसपास के लोग हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो बड़े अवधि पे हैं हमारे इलाकाओं में, उनका जो हमारे साथ बात करने का जो तरीका होता था वो एकदम डिफरेंट होता था, वो अलग होता था। और उनकी नजरों में हम एक विद्रोही तरीका से देखे जाते थे। वे हमेशा हमारे अगेंस्ट में होते थे कि हमारी, हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो मतलब सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होता था, लेकिन हमेशा वो इसी ताक में रहते थे कि कब हम गलत चीजें करें, कब हमसे कुछ गलत हो तो क्या होगा कि लोग हम पे इल्जाम करे, लोग हमारा प्रोटेस्ट करे, हमारा विद्रोह करे। तो इस तरीका का, ये हमें समाज से किसी तरीका को सपोर्ट मिलना चाहिए पॉलिटिकल लीडर का, वो बहुत कम मिलता है। लेकिन हाँ, अभी हमारे गार्जियंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, आस्ते आस्ते बहुत ऐसे लोग भी हैं जो हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वे हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीका से अभी हम लोगों के नजर में आ रहे हैं, वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे आने के लिए। जैसे कि क्राउड फंडिंग की बात कहा फुलमुनी ने, तो ये क्राउड फंडिंग भी ऐसा नहीं कि मतलब हमें हमेशा बाहर से सपोर्ट मिलता था, ऐसा नहीं। हम बहुत बार ऐसा करते थे कि अपने ही जान पहचान के लोगों के पास जाते थे, उनको शेयरिंग करते थे, उनसे बातें करते थे कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, तो जब तो वो हमें फंड देते थे। तो इस तरीका से लोग हमें अब समझने लगे हैं। तो आस्ते आस्ते इस तरीका से हमारे बीच और उनके बीच का जो गैपिंग था वो थोड़ा कम होने लगा है। इस तरीका का काम करने के लिए बहुत समय का जरूरत तो होता है। तो हम ऐसा नहीं कि इन सारी चीजों को हमेशा ही काम में मतलब हमेशा इधर उधर दौड़ना या फिर भागना, ऐसा इस तरीका का काम ऐसा नहीं होता था। कभी कभी जैसे फुलमुनी ने बताया कि कभी कभी ऐसा होता था कि लोग अपनी आशाएं लेकर हमारे पास आते थे कि मेरा हेल्थ का इश्यूज है, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें। जब वो हमारे पास आते थे तो हम उनको वापस नहीं कर पाते थे, तो हम उनके लिए कुछ सोचते थे कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, कैसे कर सकते हैं उनकी सेवा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते थे, प्लान करते थे, लेकिन हमारा मेन फोकस होता था एजुकेशन। कि हम लोग दिन के समय में, रोज दिन का हमारा एक शेड्यूल होता था, सुबह 9 से लेकर एटलीस्ट 10 11 12 बजे तक का स्टडी शेड्यूल होता था। उसके बाद में हम एक पार्क में जाते थे, गार्डनिंग में, वहाँ पे पार्क को डेकोरेट करते थे, सजाते थे, फ्लावर्स लगाते थे, गार्डनिंग करते थे। और उसके बाद हम गांव में चले जाते थे, गांव में फिर अपने अपने गांव में ट्यूशंस वगैरह होता था, फिर पर्सनल स्टडीज होता था। तो इस तरीका से हम जो बोलना है अपने आप को मेंटेन करके चलते थे, और बहुत सारे ऐसे काम भी करते थे जिसके द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा फुलमुनी, अगर आप बता दो तो सही रहेगा।
जैसे सुजीत ने बताया, बिल्कुल सही, यही शेड्यूल होता था हमारा। 11-12 बजे से हम फील्ड में काम करते थे, लाइक गांव में जाना और गांव को समझना, क्योंकि बेसिकली हमने कभी आर्ट्स के अलावा कभी कुछ पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। हमारे गांव में जो स्कूल्स है वो कभी हमें ना कॉमर्स प्रोवाइड किया और ना ही साइंस प्रोवाइड किया, तो हम मजबूरन हमें आर्ट्स ही पढ़ना पड़ता था। और ज़्यादातर हमारे बच्चे सोशल साइंसेस में ही है, कोई साइंस और कॉमर्स में नहीं है, ज़्यादातर एक दो बच्चे ऐसे रहेंगे। तो हमें समूह में ही काम करना पड़ता था, तो हम ज्यादातर टाइम अपना समूह में ही बिताते थे। तो बाहर से भी हमें प्रोजेक्ट्स आते थे, जैसे कि 2018 में रिकैला सत्यार्थी फाउंडेशन से सर्वे के लिए फंड्स आया था, ड्रॉप आउट रेट्स कितनी है, ये सब करके, और भी अच्छे अच्छे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स आए थे सर्वे के लिए, तो हम उन कामों में जाते थे। उनमें दो फायदा होता था, एक तो हमें फंड भी मिलता था और उस फंड को हम प्रयत्न में ही सिक्योर रखते थे, और वो एडमिशन के टाइम में, एप्लीकेशन के टाइम में, ट्रेन्स के टिकट, जर्नी, एग्जाम्स देने के टाइम में, ये सब जो पैसे खर्चे होते थे तो हम उसमें यूज करते थे। हम अपने पर्सनल यूज के लिए किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, ये एक फायदा होता था। और ऊपर से हमें अपने गाँव को और अच्छी तरीके से जानने के लिए मौका मिलता था, जैसे कि हमें किस चीज में और ज्यादा फोकस करनी है। ड्रॉप आउट रेट्स अगर ज्यादा हो गया तो हम उन बच्चों को ढूंढ के, जो 16 साल के कम उम्र के बच्चे ड्रॉप आउट घूम रहे हैं, हम उन बच्चों को लेके आके स्कूल्स में रिकनेक्ट करवाते थे। और बस इसी तरीके से हमारा 4-5 बजे तक हम अपने अपने घर चले जाते थे और नेक्स्ट डे हमारा सेम शेड्यूल होता था। और हम संडे को भी छुट्टी नहीं लेते थे, और संडे को हमारा स्पेशल काम होता था, जैसे कि वीकली प्रोग्रेस के बारे में हम मीटिंग करते हैं और फिर साथ में लंच करके घर जाते हैं।
और जैसे कि फुलमुनी बता रहे थे कि हम स्कूल्स में एडमिशन के लिए जाते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे जो समय पर एडमिशन नहीं लेते थे, जैसे कि कुछ बच्चे कुछ पैसों की कमी के कारण से या फिर उनके पास ड्रेस ना होने के कारण से वो स्कूल नहीं जाते थे। उनको लगता था कि हाँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे स्कूल में पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल उनको पता नहीं था कि हाँ पैसा तो बहुत कम लगता है स्कूल्स में जाने से, तो वो क्या करते थे कि घर में ही रह जाते थे। तो जब हम लोग ये सर्वे करने के लिए जाते थे तो लोगों से बातें करते थे कि तब हमें पता चलता था कि हाँ, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं वे ऐसे ही पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो क्लास 8 का आधा पढ़ाई करके छोड़ दी है, क्लास 7 में स्कूल ज्वाइन ही नहीं की, क्लास 6 में जा रही थी फिर एग्जाम लिखने के बाद उसका कोई ध्यान ही नहीं है स्कूल तरफ। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करते थे कि जाते थे और प्रिंसिपल्स जो होते थे स्कूल्स के उनके साथ में बातें करते थे। 2009 का जो RTE एक्ट था जो पास हो चुका था, तो उसके आधार पर बहुत सारी चीजों को हम लोग उनको कहते थे कि नहीं, ये तो रूल्स है कि हाँ होना चाहिए एडमिशन हर बच्चे का। तो इस तरीका से हम लोग उनको जबरदस्ती भी करके, कैसे भी करके हम लोग स्कूल में एडमिशन करा देते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि स्कूल के जो अथॉरिटी होते था, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता था, उनके साथ में हमारा थोड़ा बहुत झड़प होता रहता था। स्कूल का जो रिस्पॉन्स था वो तो बोलना चाहिए उतना अच्छा नहीं होता था कि सर, वहाँ के टीचर लोग बोले कि हाँ आप लोग बच्चों को इस तरीका से कराते हैं, पढ़ाते हैं या फिर उनको एडमिशन करवाते हैं, तो हम लोग आप ही लोगों को देते हैं कि जितने बच्चे गांव में हैं उनको आप लेके आइए और एडमिशन कराइए। इस तरीके का कभी प्रपोजल हमें मिला नहीं। हम खुद से जाते थे गाँव में और जो हमें मिलता था, जो हमें दिखता था, हम उनको लेके फिर और स्कूल्स में जाते थे। और इससे क्या होता था कि हमारा प्रॉफिट और भी होता था कि हम गाँव के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते थे, गांव के बच्चों के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते थे, और हम उन बच्चों को वहां पे इंगेज कर सकते थे। और इस तरीका से हम लोग, मतलब हमारे साथ और उनके साथ, उनके फैमिली के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होता था। थैंक यू
जी। यह तो वाकई बहुत ही सामर्थ्य का काम है कि आप बच्चों को एक परिवार, एक समुदाय के हिस्से की तरह देखते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि आपका मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग स्कूल और शिक्षा को देखते हैं, वह कोविड महामारी के दौरान पूरी तरह से बदल गया है, और कुछ पहले से मौजूद मुद्दे महामारी के कारण अधिक बढ़ गए हैं, जैसे कि भूखमरी, बेरोजगारी, बच्चों का स्कूल छोड़ना, घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को पाने में असुविधा आदि। महामारी के दौरान आपके क्षेत्र में इन समस्याओं ने क्या रूप ले लिया है?
जी, मतलब ये जो COVID-19 बोलना चाहिए, इफेक्ट तो हर तरफ पड़ा है, हर जगह पड़ा, हर पूरे दुनिया में पड़ा। लेकिन अगर हम लोग हमारे चाय बागानों की बात करें, हमारे गाँव की बात करें, तो वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा। जैसे कि मैंने एक बार एक क्राउड फंडिंग किया था, अपने गांव के लिए कि कुछ बच्चों के साथ मैंने बात किया, उनके साथ हम लोग रोज दिन बैठते थे, बातें करते थे, तो पता चलता था कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के समय में, क्योंकि हमें पता था कि बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे। तो हमने पूछना स्टार्ट किया कि क्या रीजन है कि आप लोग क्यों नहीं कर पा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि उनके पास मोबाइल वगैरह सब नहीं था, किसी के पास होता था तो वो उसके भैया भैया या फिर उसके मम्मी पापा लेके चले जाते थे, तो इस तरीका से उनका पढ़ाई नहीं हो पाता था। तो हमने डिसाइड किया कि तीन चार करके हम लोग क्लास वाइज डिवाइड कर देंगे, और इस तरीका से जो क्राउड फंडिंग से जो पैसा आएगा उस पैसा को हम लोग उनके लिए कुछ मोबाइल या फिर कुछ ऐसा सिस्टम खरीद देंगे जिससे वे ऑनलाइन क्लास अच्छा से कर सके। लेकिन क्या होता था कि ये सारी चीजें हम लोग इसलिए करते थे क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण से चाय बगानों में काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, कोई बाहर भी काम कर रहा है, तो इस तरीका से उनका जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, वे लेबर की तरफ अग्रसर हो रहे थे। और भी समस्याएं हुई डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, तो उसको मैं चाहूंगा कि फुलमुनी आप थोड़ा सा आगे लेके चले।
हाँ जी, स्पेशली लॉकडाउन और कोविड इस टाइम के समस्याओं के बारे में अगर बताना चाहे तो ये जो मोलेस्टेशन वाली जो ये है ये बढ़ गई थी, लाइक हर दो दिन तीन दिन में गांव में देखा जा रहा था कि रेप और मोलेस्टेशन छोटे बच्चों के साथ में बढ़ जा रहा था। तो लोग गांव में प्रोटेस्ट करने लगे, सोशल मीडियाज में आने लगी, हमारे पास भी हमें भी जानकारी मिलने लगी, तो हमारा पुलिस स्टेशन का चक्कर, इधर उधर जाना, पुलिस स्टेशन में रोज रोज जाना, उनको कंप्लेंट दर्ज करने के लिए फोर्स करना, ये सब होने लगा था। और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हुआ तो था, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास कुछ काम भी नहीं था और कुछ काम भी नहीं और फिर चीजों की कमियां होने लगी, पैसे नहीं मिल रहे थे लोगों को खाने के लिए, चीजों की कमी हो रही थी, तो हाँ डोमेस्टिक वायलेंस तो था उधर। अगर निकिता तुम कुछ बोलना चाहोगी तो।
हाँ, जैसे फुलमुनी बताए लगभग वही था कि डोमेस्टिक वायलेंस होने लगी थी क्योंकि काम बंद होने लगा ना, वर्क सब बंद होने लगा कोविड के कारण, एक महीने लगभग तो बंद ही थी चाय बगान, तो काम ना होने की वजह से पैसा नहीं है, पैसा ना होने की वजह से घर पे खाना नहीं है, खाना नहीं होने की वजह से हस्बैंड क्या करते थे, वाइफ के ऊपर फायर हो जाते थे, तो इसके वजह से ज्यादातर महिलाओं को बहुत से प्रॉब्लम की समस्याओं से लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा।
जैसे कि मतलब हम लोग हमारे एरिया में सेक्सुअल हरासमेंट को लेके फुलमुनी ने थोड़ा बहुत कहा कि बहुत सारे केस कोविड के सिचुएशन में आए थे जो मतलब बहुत ही दर्दनाक थे और हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक भी, तो उसको लेके हम थोड़ा सा यही कहना चाहेंगे कि ये सारे इश्यूज बहुत पहले से चलते आ रहे थे, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था प्रयत्न को तब से ये सारे इश्यूज आ ही रहे थे, बहुत सारे ऐसे केस थे, बहुत सारे ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे जो मतलब इसी तरीका से जो हरासमेंट होने के बाद लोग जो आते थे, जो बच्चियां होती थी 16 साल की 17 साल की, उनको हम लोग मदद दिया करते थे कि हाँ उस उम्र में वो एक माँ बन जाती है, तो ये एक मतलब अलग ही तरह का मतलब हमारे एरिया का जो प्रचलन था वो इस तरीका से था कि लोग जो छोटे छोटे उम्र में ही लोग इस तरीका से शादी कर लेते थे और उन्हें तो पता नहीं होता था, वो 16 साल में 17 साल में शादी कर लेते थे, उस समय में तो वो बच्चियां ही होती थी, लेकिन जो कम्युनिटी होता था, जो लोकल कम्युनिटी होता था, वो भी मतलब यही सोचते थे कि नहीं कि एक बार लड़की आ गई लड़के के पास तो और मतलब उसको क्या और रिटर्न करें, क्यों उसको और घर भेजे, तो इस तरीका से वो रख लेते थे। तो ऐसे जगहों में हम जाते थे उनसे बात करने के लिए, उनसे शेयरिंग करते थे, और इस तरीका का जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस होता था उनको लेके हम लोग आगे आते थे। कभी अगर ये ज्यादा ही बढ़ जाता था तो हम कानून का भी सहारा लेते थे, पुलिस का भी सहारा लेते थे। तो इस तरीका से हम लोग जो हमारे एरिया में जो सेक्सुअल हरासमेंट है हुआ है, जो हमने मतलब बहुत बार फेस किया है, बहुत बार तो ऐसे कि लोग हमारा दुश्मन बन चुके हैं, वो हमसे मतलब अलग तरीका से बात करते हैं। हमारे ग्रुप में जैसे बताया निकिता ने, बहुत सारी लड़कियां हैं ज्यादा मात्रा में, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लड़कियों के साथ भी धक्का मुक्का हुआ है लोगों का, मतलब उनका कलर पकड़ के इस तरीका से मतलब घटनाएं हुई है। तो यही मैं ऐड करना चाहता था कि जो सेक्सुअल हरासमेंट था वो किस तरीका से हमारे समाज में पहले से ही आता है, पहले से ही आ रहा है और अभी भी चल ही रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रयत्न के जरिए कि थोड़ा बहुत इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो, और इसके लिए अगर आप कुछ आइडियाज दे, आपके पास कुछ प्लान्स होंगे तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा कि हम किस तरीका से ये जो हरासमेंट वाला केस है उसको हम लोगों को शेयर कर पाएंगे। तो एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम कर सकेंगे, अगर आप लोग भी हमारा मदद करें तो हमें बहुत खुशी होगी इसके लिए।
जी बिल्कुल, यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इसका सामना करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आपके समुदाय के सभी साथी सदस्यों के साथ काम करने के बाद आपको क्या लगता है, युवाओं के साथ काम करने की सबसे बड़ी उपलब्धि और अनुपलब्धि क्या है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि आप अपने समुदाय की सबसे बड़ी सफलता क्या मानते हैं।
तो उपलब्धि के बारे में बात कर रहे थे हम कि चाय बगान से निकल के आउट ऑफ स्टेट में पढ़ना, ये भी बहुत बड़ी बात है प्रयत्न के लिए, क्योंकि चाय बगान से कभी वो निकल पाते ही नहीं है, क्योंकि चाय बगान के स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन ऐसे बना दिए हैं कि यहाँ से निकल के पढ़ना मतलब बहुत मुश्किल की बात है। और इवन हम अभी 200 क्रॉस कर दिए स्टूडेंट, और 200 क्रॉस करके अभी स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट में पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है मुझे। और इवन जॉब की बहुत प्रॉब्लम होती थी, और इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं बोलना ये चाहूंगी कि प्रयत्न होने की वजह से, इवन आप बोलो डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग, माइग्रेटिंग, चाइल्ड लेबर, ड्रॉप आउट, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है विथ ईच अदर। तो हम आप मतलब आप गहराई से सोचोगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन आप अगर अब हमारे प्रयत्न में आप ज्यादा से ज्यादा देखो लड़कियां हैं, और ज्यादातर चाय बगान में ऐसी होती है कि लड़कियां और लड़के कम उम्र में ही भाग जाते हैं, इवन शादी कर लेते हैं अपना कंसर्न से। तो इसके वजह से मतलब वो खुद बच्चे होते हैं और वो खुद शादी कर लेते हैं, तो इवन बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता नहीं होती है। शादी तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो जो चीजें हैं वो सब चीजें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसके वजह से। इवन शादी कर ली उसकी वजह से क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन ही होती है, पैर तो होती नहीं है। फिर माइग्रेटिंग, चाइल्ड लेबर, वो खुद चाइल्ड होते हैं, अब उनको शादी कर लिए तो कमाना तो पड़ेगा, वाइफ को खिलाना तो पड़ेगा। इवन वो स्कूल से भी ड्रॉप आउट हो गए बच्चे हैं, तो उन्हें तो कोई जॉब अच्छा मिलेगा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि हम ये सारी चीजें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रयत्न होने की वजह से इतने सारे लड़कियां, अभी सबसे ज्यादा लड़की हम लोग के ग्रुप में लड़की ही है, लड़कों का संख्या बहुत कम है। इवन अब 100 लड़कियों की मतलब लाइफ सिक्योर है, अभी पढ़ाई कर रही है, मतलब अभी आउट ऑफ स्टेट वो पढ़ रहे हैं, मतलब अब फिर से घुर के वो शादी तो नहीं करेंगे, अभी वो अपना कैरियर फ्यूचर बना के ही शादी करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम बहुत सारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रयत्न होने की वजह से। तो ये मैं उपलब्धि मानती हुई प्रयत्न का। और अनुपलब्धि फुलमनी ये तुम ऐड कर दो, ओवर टू यू।
हाँ, अनुपलब्धि हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोटिव है प्रयत्न का कि हम एक साथ लेके चले, सब हम भी आगे बढ़े और सबको साथ में लेके चले, तो हमारा प्रोसेस ये होता है कि अगर मैं प्रयत्न से जुड़ी, मैं प्रयत्न में हूँ, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ उस गांव से भी दो बच्चे और आए मेरी तरह, वो भी प्रयत्न की प्रोसेस में ज्वाइन करे, वो भी दो बच्चों को और बुलाए। तो हम इस तरीके से सोचते हैं और अपना प्रयत्न के मेंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये चीजें भूल जाते हैं, वो अपना पढ़ाई कर लिया, उन्होंने अपना जॉब ले लिया, तो बिल्कुल दूरियां बना बना देते हैं, कोई कांटेक्ट्स नहीं, कभी कभी आ जाते हैं मिलने के लिए। तो मेरे हिसाब से अनुपलब्धि कह सकते हैं हम इसी बात को, क्योंकि जिस मोटिव से हमने ग्रुप बढ़ाने के लिए सोचा था, जिस मोटिव से ग्रुप है, ये मोटिव कहीं ना कहीं इस वजह से लिमिटेशंस में आ जाती है। तो इस चीज को हम अनुपलब्धि कह सकते हैं प्रयत्न। सुजीत, आपको कुछ कहना है?
हाँ फुलमुनी, तो जैसे अनुपलब्धि के बारे में बातें हो रही थी और उपलब्धि के बारे में भी निकिता जी ने शेयर किया, तो मैं भी कुछ बताना चाहूंगा कि उपलब्धियों में से कुछ कुछ चीजों को, जैसे अभी लगभग हम हमारा जो संख्या है, जो हायर एजुकेशन करने वालों की जो संख्या है, वो लगभग 200 से ऊपर हो चुका है। और अभी हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी हैं, टिस्सो, अजिम प्रेम, जो पहले हमारा कॉन्सेंट्रेट केवल एक ही दो यूनिवर्सिटीज में होता था कि टिस में हो जाए, अजिम प्रेम जी में हो जाए, इस तरीका से। लेकिन अब हम लोगों ने ब्रॉड कॉन्सेप्ट अपना लिया है कि हाँ, बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीका से हमने मतलब हमारे जो बच्चे हैं अभी बहुत सारे अलग अलग जगहों में पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हम जिस लिए हम लोग काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, हमने जो शुरुआत की थी कि हमारे एरिया में लाइवलीहुड को लेके बहुत सारे असुविधाएं हैं, तो उन असुविधाओं में जॉब भी एक तरीका का सहायक बन रहा था। तो अभी बहुत सारे अभी जॉब कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न जगहों में जॉब कर रहे हैं, और वो भी कुछ अभी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, हमारे बच्चों को और प्रयत्न को, और एडवाइस भी हमेशा जब मीटिंग्स होती है बहुत सारे बार तो एडवाइस भी करते हैं। तो इस तरीका से ये देखा जाए तो हमने जिस उद्देश्य से प्रयत्न को स्टार्ट किया था वो लगभग लगभग अचीव हो रहा है आस्ते आस्ते। तो और आशा भी यही है कि हाँ, आगे हम कुछ और ज्यादा करें। हम लोग यही सोचते हैं कि अभी जैसे कि बहुत बार ऐसे हुआ कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिलने के कारण से हम लोग सोचते थे कि नहीं, अब हमें पॉलिटिशियन भी बनना पड़ेगा। जब हम कभी पुलिस का चक्कर, जेल का चक्कर लगाते थे तो हमें लगता था कि नहीं, हमें एसआई भी बनना पड़ेगा। फिर हम जब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे तो हमें ये भी फील होने लगा कि नहीं, हमें अभी हमें ये वकालत भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमारे स्टूडेंट को वहां भी हमें भेजना पड़ेगा। तो इस तरीका से हमारा जो माइंड जो है अभी बन रहा है कि हाँ, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है, बोलना चाहिए एक तरीका का, वो आंदोलन अगर हम लोग इसी तरीका से निकलते रहे तो खत्म नहीं होगा। तो हमें कुछ कुछ जगहों को भी लेना पड़ेगा, जैसे कि पॉलिटिशियन का जगह हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव का एरिया हो गया, फिर स्कूल्स में प्रिंसिपल्स का जगह हो गया। तो इस तरीका से बहुत सारे चीजों को हमें लेना पड़ेगा, तब जाके जो हम हमारे सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो तब जाके वो कहीं ना कहीं सुधार आएगा। तो अभी हम लोग इस तरीका से काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने समुदाय के साथ भविष्य में किन अन्य पहलुओं पर कार्य करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है जो लोग आपके समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, इसमें आपका किस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं?
जैसे कि लॉकडाउन के समय में क्या हो रहा था कि हम ट्यूशंस कर रहे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि हम फिजिकल मोड में नहीं हो पा रहे थे एक जगह, तो हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे हमें जो हमें ऑनलाइन शिक्षा दिया करते थे, जैसे कि हमारा एक हमारे ग्रुप का एक मेंबर है डॉक्टर जॉय प्रफुल्ल लकड़ा, तो उन्होंने TISS मुंबई से अपना PhD कंप्लीट की। फिर जब वे हमारे साथ में आए तो बहुत सारे ऐसे हुए कि उनके दोस्त जो थे दूसरे अलग अलग कम्युनिटी के थे, तो उनके साथ में हमारा बात हुआ, उनके साथ उन्होंने उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो है उन्होंने वॉलंटियरली काम करने के लिए आगे आया कि हाँ हमारे बच्चों को वो ट्यूशंस करेंगे, इंग्लिश का ट्यूशंस कराएंगे, मैथ्स का ट्यूशंस कराएंगे, सोशल साइंस का ट्यूशंस कराएंगे। तो इस तरीका से हम लोगों ने हमें बाकी लोगों ने मदद किया। और जैसे कि हमने, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज कि अपना जो ग्रुप है उसके माध्यम से लोगों में एक तरीका का उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं और भेजना चाह रहे हैं मैसेज कि कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है एजुकेशन, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीका से, तो और आगे बहुत सारे हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। तो मैं चाहूँगा निकिता और फुलमुनी दोनों से कि आप लोग थोड़ा बहुत शेयर कर दें।
मैं जाती हूँ पहले। ज्योति जी, आपने पूछा था कि हमें समुदाय से किस तरीके का हेल्प चाहिए अपने प्रयत्न को आगे बढ़ाने के लिए और अपने प्रयत्न का सोच आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे समुदाय से हमारा एक ही आशा है कि वो हमारी हम पे जितना भरोसा करते हैं उतना ही भरोसा वो अपने बच्चों से भी करें, और प्रयत्न जो सोच है उस सोच को और बढ़ाए, और हम जो भी कर रहे हैं उनमें भी अपना योगदान दे, जैसे कि एजुकेशन को अपने अपने नाम करना, लाइक पढ़ाई करना, तो अपने बच्चों को एनकरेज करें पढ़ाई करने के लिए और प्रयत्न से जुड़े, और अगर हम एक साथ रहेंगे तभी ही हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम एक साथ नहीं रहे तो हम कभी कहीं नहीं आगे बढ़ सकते, एक इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बस अपने समुदाय के लिए यही कहना चाहूंगी कि वो अपना समर्थन दे। निकिता?
हाँ, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आप फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो हम अभी दो ही डिस्ट्रिक्ट को लेके काम कर रहे हैं, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार। तो आने वाला समय में हम ये चाहेंगे कि हम 4-5 और डिस्ट्रिक्ट में काम करें, ताकि बच्चे निकले, और इवन आप चाय बगान की बोलो तो बच्चे में वो हुनर है बट उनको देखने वाला कोई नहीं है, और मतलब जैसे कि आप में कोई हुनर है तो वो पहचानने वाला होने वाला चाहिए कि आप में ये हुनर है, आप इस पे काम करो, कर सकते हो, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो अपना हुनर को खोते जाते हैं। तो आने वाला दिन में ऐसा होगा कि हम 4-5 डिस्ट्रिक्ट में काम करें और बच्चे और आगे बढ़े और अलग 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 इंस्टीट्यूट में पढ़े, और आगे जो भी सपना है कि हम लोगों का ये हर एक सेक्टर में काम करें जो सुजीत ने बताया वो पूरी हो।
जी, आप जो सार्थक कार्य कर रहे हैं उसे इतने विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सुनकर हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अक्सर यह माना जाता है कि सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ सभी युवाओं और बच्चों के लिए समान रूप से सुलभ होता है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आप सभी युवा साथियों के साथ मिलकर जो महत्वपूर्ण काम करने में प्रयत्नशील हैं, इस तरह के समर्पित कार्यों को करते हुए देखना वास्तव में बड़ा प्रेरणादायक है, और हमें आशा है कि हमें आप और आपके समूह के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने के अधिक अवसर प्राप्त होते रहेंगे।
जी ज्योति जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम शुरुआती दौर में हैं अभी भी, हमें ऐसा लगता है कि हम एजुकेशन को लेके काम कर ही रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जो मैसेज है तो बाकी लोगों तक भी पहुंचे, कि लोग हमारा विश्वास कर पाए, लोग आगे बढ़ पाए और खुद पे विश्वास भी करें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, मैं तो चाय बागान में केवल काम कर रहा हूँ, बाकी बाकी पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता। तो इस तरीका का सोच आज भी हमारे गांव गांव में है, गांव के युवाओं में है। तो हम आस्ते आस्ते करके यही सोच को बदलना चाह रहे हैं, और आपने एक अच्छा माध्यम दिया हमें ये बातें, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो सोच है, उसको उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हम पूरा प्रयत्न का टीम आप लोगों का पूरा पूरी आभारी रहेंगे, और हम चाहेंगे कि अगर हो तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे हमें मदद कर सकते हैं, और हमें बहुत सारे प्रकार की आवश्यकता है, जैसे कि मेंटरों की जरूरत होती है। तो आप ऐसे समय में मेंटरशिप भी कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो मेरे लिए और मेरे प्रयत्न साथियों के लिए बहुत ये बात होगी कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो मैं फुलमुनी को कहना चाहूंगा कि आप कुछ ऐड कर दो, और निकिता आप अगर कुछ ऐड करना चाहोगे तो आप भी कर सकते हो।
हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलूंगी आप लोगों को कि हमें इतनी नम्रता से सुनने के लिए। धन्यवाद इसलिए भी कहूंगी कि आप हम लोगों की आवाज को आप कहीं और पहुंचाने जा रहे हैं लोगों के पास, कि प्रयत्न बोल के भी कुछ है, बस इतना ही।
धन्यवाद आप सभी का हमें सुनने के लिए, और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं कई तरीके से। लाइक मेंबरशिप भी होता है हमारा, प्रयत्न मेंबरशिप, या फिर आप हमें बुक्स दे सकते हैं, आपके पुराने बुक्स जो हम अपना कम्युनिटी लाइब्रेरी खोलने का सोच रहे थे, तो हमने ऑनलाइन भी अपना जो लोग अपने पुराने बुक्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनका बुक हम कम्युनिटी लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि कम्युनिटी के जो बच्चे हैं गांव में अभी, वो आके उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सके, बुक्स पढ़ सके, अपने इंटरेस्ट किताबों में जगा सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाइक उपलब्धि हो सकती है हमारे लिए। तो मैं स्पेशली ज्योति जी और वेदा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इस वर्चुअल मीटिंग का कंडक्ट किया और हमें बहुत ही नम्रता से सुनने के लिए धन्यवाद।
CCYSE आवाज़ के एक और एपिसोड में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपसे अगली बार एक नए एपिसोड और एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे।